ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा किए जाने योग्य कामों के संबंध में रचनात्मक सुझाव देने का प्रधानमंत्री ओली ने किया सभी से आग्रह। नियमित समय के अलावा अतिरिक्त समय में भी सेवा प्रवाह करने का संघीय अस्पतालों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आग्रह। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन के क्रम में कम से कम 39 लोगों की हो चुकी है मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा तत्काल और दीर्घकालीन रूप में किए जाने वाले कामों के संबंध में सभी क्षेत्रों से रचनात्मक सुझावों की अपेक्षा सरकार को है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में नेकपा एमआलए की ओर से सरकार को दिए गए सुझाव लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज से सरकार तत्काल उठाए जाने वाले कदम और नीतिगत निर्णय संबंध में ठोस सुझाव की अपेक्षा करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और समृद्धि के कामों को गति दे सकने वाले सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार तैयार है। एमआलए द्वारा दिए गए सुझावों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सुशासन कायम, युवाओं को देश के अंदर ही रोजगारी मुहैया कराने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह को प्रभावकारी बनाने, भूमिहीन किसानों की समस्याओं के समाधान, सार्वजनिक शिक्षा के स्तर में वृद्धि लगायत शामिल हैं। ये जानकारी एमआलए उप महासचिव प्रदीप केवाली ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में मौजूद समस्याओं के समाधान और कुछ परिवर्तन करने के लिए ही नई सरकार का गठन हुआ है। आज नेपाल उद्योग परिसंघ के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वे इससे पहले भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए इस बार फिर से वे महज पद के लिए ही प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समस्याओं के समाधान और अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाना ही वर्तमान सरकार का ध्येय है। मौके पर परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 3 साल से शिथिल रहे अर्थतंत्र को ऊपर उठाने के लिए सरकार को उच्च प्राथमिकता के साथ काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में थारू आयोग का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेन्द्र दाहाल ने थारू आयोग का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 पेश किया। इससे पूर्व बैठक के शुरू में आपदा पीड़ितों के उद्धार, राहत, क्षतिपूर्ति लगात समसामयिक मुद्दों के प्रति सरकार का ध्यानाकृष्ट किया था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक सावन 7 गते सोमवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। सभामुख देवराज घिमिरे ने सिंह दरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवन का काम जल्द पूरा करने का निर्देश किया है। आज सिंह दरबार में निर्माण से सरोकार वाले अधिकारियों से प्रगति संबंध में संज्ञान लेते हुए सभामुख घिमिरे ने निर्देश देते हुए कहा कि संसद भवन की सभी 12 संरचनाएं मार्गशीर्ष मासांत तक ही पूरी हो जाएं, ताकि संसद का आगामी शीतकालीन अधिवेशन अपने ही भवन में हो। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने बांग्लादेश स्थित नेपाली राजदूत घनश्याम भंडारी से वहां विकसित पिछले घटनाक्रम और वहां मौजूद नेपाली विद्यार्थियों के बारे में संज्ञान लिया। मंत्री डॉ राणा ने आज राजदूत भंडारी को फोन करके बांग्लादेश में मौजूद नेपाली विद्यार्थियों और अन्य नेपाली नागरिकों की अवस्था के बारे में जानकारी ली, साथ ही किसी भी नेपाली को मुश्किल न होने देने के लिए आवश्यक समन्वय करने के निर्देश भी दिए। इसी बीच नेपाल सरकार बांग्लादेश में विकसित पिछले घटनाक्रम में तत्काल किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ने पर ढाका में स्थित नेपाली दूतावास में संपर्क करने का आग्रह किया है। साथ ही 2 नंबर भी साझा किए गए हैं, जो कि 8801880691013 और 8801745407958 हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा कि कृषि प्रधान देश में सिंचाई का अभाव होना उचित नहीं है। आज सिंचाई विभाग द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री खड़का ने कहा कि सिंचाई का उचित प्रबंधन कर कृषि उत्पादन पर जोर दिए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने संघीय अस्पतालों से नियमित समय के अलावा अतिरिक्त समय में भी सेवा प्रवाह करने का आग्रह किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश पुरहथोकी ने स्वास्थ्य सेवा को झंझट रहित बनाने और सहज रूप से सेवा तक नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित के अलावा अतिरिक्त समय में भी सेवा संचालित करने का आग्रह किया। बता दें कि मंत्रालय ने अतिरिक्त समय में सेवा संचालन करने के लिए विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन संबंधी कार्यविधि 2077 को क्रियान्वयन में लाया है। उन्होंने कार्यविधि अनुसार सेवा यथाशीघ्र शुरू करने और सेवा शुरू होने संबंधी जानकारी मंत्रालय को कराने का आग्रह भी किया है। बीते आषाढ़ 21 गति से अवरुद्ध राष्ट्रीय गौरव वाली काली गंडकी कॉरिडोर सड़क संचालित हुई है। बता दें कि लगातार बारिश के कारण बागलू नगर पालिका वार्ड नंबर 10 दबल्यांग में बाढ़ में सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध थी। बारिश रुकने के बाद सड़क की मरम्मत करके इसे संचालित की गई है। ये जानकारी बागलूंग जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में छात्रों का चल रहा विरोध प्रदर्शन काफी उग्र और हिंसक हो गया है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक छात्रों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी, जिसके बाद देशभर में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी सप्ताह के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं, जिनमें से गुरुवार को 32 लोग मारे गए। देश के 64 जिलों में ये प्रदर्शन फैल गया है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। राजधानी ढाका के पुलिस बल के प्रवक्ता फारूक हुसैन के हवाले से AFP ने बताया कि कल हुई झड़पों में करीब 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए और करीब 50 पुलिस बूथ जला दिए गए। पुलिस के बयान में कहा गया है कि यदि इस तरह का हिंसक प्रदर्शन आगे भी जारी रहा तो पुलिस अत्यधिक कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होगी। दूसरी तरफ अस्पताल कर्मचारियों ने बताया कि अब तक हुई कम से कम 2/3 मौतों का कारण पुलिस की गोलीबारी है। इंडिपेंडेंट टेलीविजन के मुताबिक गुरुवार को देश भर के कम से कम 26 जिलों में झड़पें हुई। दिन भर में 700 से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें 104 पुलिस अधिकारी और 30 पत्रकार भी शामिल हैं। दरअसल बांग्लादेश में चल रहा प्रदर्शन आरक्षण के खिलाफ है। छात्रों की मांग है कि देश में कोटा प्रणाली को समाप्त करना चाहिए। सिविल सेवा के आधे से अधिक पदों को आरक्षित कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम के फ्रीडम फाइटर के बच्चे भी शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि इस तरह के नियमों से सरकार समर्थक समूहों के बच्चों को लाभ मिलता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा किए जाने योग्य कामों के संबंध में रचनात्मक सुझाव देने का प्रधानमंत्री ओली ने किया सभी से आग्रह। नियमित समय के अलावा अतिरिक्त समय में भी सेवा प्रवाह करने का संघीय अस्पतालों से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आग्रह। और बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शन के क्रम में कम से कम 39 लोगों की हो चुकी है मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।